पुस्तक सामर्थ्य के साथ सुसमाचार की घोषणा करना, लेखक रॉबर्ट प्रकाश, अध्याय 9, छुटकारा और प्रभुता। एशली को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि कोई उसका गला दबाकर उसकी सांस रोक रहा हो और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जब मैं एक कलीसिया रोपण विद्यालय चर्च प्लांटिंग स्कूल में दुष्ट आत्माओं से छुटकारे के बारे में लोगों को सिखा रहा था, तब एशली भी मुझे सुन रही थी और उसको अब समझ में आने लगा था कि जिसे वह मनोविकार एवं मानसिक तनाव समझ रही थी वह तो दुष्ट आत्माओं का कार्य है। उसे समझ आने लगा कि उसकी शांति को दुष्ट आत्माओं ने चुरा लिया है और उसका हृदय उससे आज़ाद होने के लिए तड़पने लगा। उस दिन क्लास खत्म होने के बाद वह व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करवाने के लिए मेरे पास आई और मुझे अपनी कहानी विस्तार से बताने लगी। 4 साल पहले जब कॉलेज के अंतिम वर्ष में वह थी, एक लड़के के साथ उसकी दोस्ती थी। एक बार उस लड़के ने एशली पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला, परंतु एशली ने सख्ती से उसे मना कर दिया। उसके बाद उस लड़के ने एशली के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। एशली ने डटकर उसका सामना किया और वह अपने आप को बचाकर वहां से निकल गई। उन दोनों की दोस्ती खत्म हो गई, लेकिन उस दिन के बाद से रात को उसे डर लगने लगा। लगभग 4 साल तक उसे डरावने सपने आते रहे। हर रात वह सपने में देखती थी कि कुछ आदमी उसका पीछा कर रहे हैं और उसके साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं। उनसे बचने के लिए वह भाग रही थी। हर रात वह भयभीत होती थी और मानसिक रूप से तनाव में एवं व्यग्रता में रहती थी। भयभीत होकर वह जाग उठती थी। मेरी पत्नी अभिलाषा मेरे साथ मिलकर एशली के लिए प्रार्थना करने लगी। हमने पवित्र आत्मा को आमंत्रित किया और डराने और सताने वाले दुष्ट आत्माओं को डांटा। वह थोड़ी नर्वस बेचैन थी और क्योंकि वह पश्चात देश से संबंध रखती थी, इस कारण दुष्ट आत्मा वाली बात पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर पा रही थी। हमने उसके लिए प्रार्थना की। इस दौरान कोई प्रकट रूप से दुष्ट आत्मा का प्रकटीकरण, जैसा कि बहुत सी बार होता है, वैसा तो कुछ दिखाई नहीं दिया। इस कारण उसे थोड़ा और संदेह और शक होने लगा कि वह दुष्ट आत्माओं से आज़ाद हुई भी है या नहीं। परंतु मैंने उसे भरोसा दिलाया कि जरूरी नहीं है कि तुम्हें छोड़ने से पहले दुष्ट आत्माएं अपना प्रकटीकरण करें। हमने यीशु में आज़ादी के लिए उसे आशीष दी और वह अपने घर वापस चली गई। उस दिन के बाद एशली से कई बार मेरी मुलाकात हुई और मैंने उससे कई सवाल पूछे। वह धन्यवादित थी और उसने गवाही दी कि अब वह उन डरावने सपनों और भय से आज़ाद है। उस दिन छुटकारे की प्रार्थना के बाद से सब कुछ ठीक है। बहुत साल बाद भी वह आज़ाद है और उसे अचंभा होता है कि जिस भय से वह लगातार 4 साल तक परेशान रही, उससे यीशु ने उसे आज़ादी दी है। यीशु को उसने ना सिर्फ अपने उद्धारकर्ता के रूप में अनुभव किया, परंतु उसे अपने छुटकारा देने वाले के रूप में भी उसने अनुभव किया है और इस बात ने उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल दी है। यीशु जहाँ कहीं भी गए, वहाँ उन्होंने 2 मुख्य चिन्ह जरूर प्रकट किए, बीमारों को चंगा करना और दुष्ट आत्माओं को निकालना। दुष्ट आत्माओं को निकालना यीशु का कार्य था, लूका 13:32। वह दुष्ट आत्माओं को भगाने और निकालने से जरा भी पीछे नहीं हटा। उसने इस बात की कभी भी परवाह नहीं करी कि ऐसा करने से सभा में व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार की सेवकाई के कारण मतभेद और गड़बड़ी भी पैदा हुई और लोगों में बहस भी छिड़ गई, परंतु यीशु ने इस बात की परवाह नहीं की कि लोग उसके बारे में क्या बोलते या सोचते हैं। उसने दुष्ट आत्माओं को भगाना और निकालना जारी रखा। मत्ती 9:33-34, 12:22-28, लूका 8:35-37। बंधन में जकड़े हुओं को छुड़ाना परमेश्वर के महान प्रेम और उसकी दया का प्रकटीकरण करना है, और यीशु ऐसा ही करने के लिए इस पृथ्वी पर आए थे। लूका 4:18। दुष्ट आत्माओं को पहचान पाना। यीशु के समय के सामान्य लोग दुष्ट आत्मा के कार्य को भली भांति समझ और पहचान पाते थे। ध्यान दीजिए कि किस प्रकार से वे लोग दुष्ट आत्माओं के सताए हुओं की पहचान कर पाते थे और उन्हें छुटकारे के लिए यीशु के पास लाते थे। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और उसने इन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। मत्ती 8:16। अपने आप को उस स्थान पर रख कर सोचें। मान लीजिए यीशु आपके पड़ोस में आते हैं, आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जिसे दुष्ट आत्मा परेशान करती है, आप किन लोगों को खोजकर यीशु के पास छुटकारे के लिए लाएंगे? आप दुष्ट आत्मा के कार्य को कैसे पहचान पाएंगे? बहुत से लोगों को इस बात की जरा भी समझ नहीं होती है, जिन लोगों को यीशु के पास लाया गया था उन्हें वास्तव में छुटकारे की ज़रूरत थी, क्योंकि वे दुष्ट आत्माओं की गिरफ्त में थे। ऐसा हम इस कारण से कह सकते हैं क्योंकि यीशु ने उनके अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकाला। यीशु ने यह नहीं कहा, तुमने अच्छी कोशिश करी परंतु अभी तुम में आत्माओं की परख की कमी है और तुम बहुत से ऐसे लोगों को दुष्ट आत्माओं के सताए हुए समझकर मेरे पास ले आए हो जिनमें दुष्ट आत्मा नहीं है। दोस्तों, जो लोग बंधनों में पाए जाते हैं उनके बीच सेवा करने का पहला कदम यह है कि हम दुष्ट आत्माओं को पहचानना सीखें। यदि आप पूरब के देशों में रहते हैं तो दुष्ट आत्माओं को आप पश्चिमी देशों में रहने वालों से बेहतर रीति से पहचान और समझ पाएंगे, परंतु फिर भी आपको परख के आत्मा की और भी ज़रूरत है। प्रायः दिखाई पड़ने वाले चिन्ह। अब हम दुष्ट आत्माओं के कार्य और गतिविधि की समीक्षा करेंगे। जब आप मरकुस 1:21-28 को पढ़ेंगे तो आप दुष्ट आत्माओं के प्रगटीकरण को बेहतर प्रकार से जान एवं समझ पाएंगे। तब वे कफरनहूम में आए और वह तुरंत सप्त के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, यह क्या बात है, यह तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती हैं, और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे देश में फैल गया। मरकुस 1:21-28। दुष्ट आत्माओं की गतिविधियों को समझने के लिए बहुत अधिक आत्मिक ज्ञान और समझ की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ तक कि एक अविश्वासी भी दुष्ट आत्माओं की बहुत सी गतिविधियों की अच्छी खासी समझ रखता है। उपरोक्त घटना में हम दुष्ट आत्माओं के प्रगटीकरण को देखते हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार से उस मनुष्य के द्वारा वह बात करती है। वह यीशु को पहचान जाती है और यीशु के पास जो आत्मिक अधिकार है उससे भयभीत होती है। अपने बारे में बात करते समय वह बहुवचन जैसे हमें का इस्तेमाल करती है, चीखती चिल्लाती है और जिस मनुष्य के अंदर पाई जाती है उसे मरोड़ती है। दुष्ट आत्मा के अन्य प्रगटीकरण हैं, जैसे ऐसी भाषा बोलना जो कि दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति न जानता हो और उसने कभी भी वह भाषा न सीखी हो, अप्राकृतिक ज्ञान और शक्ति, शाप देना, कोसना और निंदा करना, पागलों जैसा व्यवहार करना, खांसना और उल्टी करना, स्वयं को या फिर दूसरों को शारीरिक चोट पहुंचाना, बाल खींचना, आंखें भाव शून्य हो जाना, चेहरे में ऐठन आ जाना, जानवर जैसा व्यवहार करना, धमकी देना, हवा में उठ जाना या फिर दीवारों पर चढ़ना आदि। पूर्वी देश में रहने वाले लोग ऐसी गतिविधियों को देखकर सहज रूप से समझ जाते हैं कि ये दुष्ट आत्माओं का कार्य है, परंतु पश्चिम देशों के लोग दुष्ट आत्माओं के इन चिन्हों को प्रायः मनोवैज्ञानिक बीमारी या मनोविज्ञान की संज्ञा देते हैं और ऐसा करने के लिए हमेशा किसी वैज्ञानिक बहाने का इस्तेमाल करते हैं। प्रायः इस प्रकार के प्रगटीकरण विकासशील देशों में जैसे कि अफ्रीका, भारत और जनजातीय क्षेत्रों में होते हैं। इस कारण पश्चिमी देशों में रहने वाले इस प्रकार के दुष्टात्माओं के प्रकटीकरण को महज अंधविश्वास कहकर टाल देते हैं, जैसे कि दुष्टात्माएं पश्चिमी देशों में पाई ही न जाती हों। मुझे मेरे अनुभव के अनुसार इसकी स्पष्टता बताने की अनुमति दें। जो दुष्टात्माएं खुले रूप से प्रकटीकरण करती हैं, उनमें से लगभग 95% पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार के द्वारा मूर्ति पूजा किए जाने या जादू टोने के कारण प्रकट होती है। जब भी आप दुष्टात्माओं को खुले प्रकटीकरण को होते देखते हैं, तो आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि यह सब मूर्ति पूजा या जादू टोने के कारण हो रहा है। अधिकतर पश्चिमी देशों में रहने वाले लोग मूर्ति पूजा और जादू टोने में लिप्त नहीं पाए जाते हैं। इस कारण पश्चिम देशों में दुष्टात्माओं का इस प्रकार का खुला प्रकटीकरण कम ही देखने को मिलता है। एक बार जब हम अगुओं और विश्वासियों को प्रशिक्षण दे रहे थे, तो एक महिला मेरे पास आई और उसने मुझसे निवेदन किया कि मैं उसके घर पर काम करने वाली नौकरानी के लिए प्रार्थना करूं, जिसका नाम देवकी था। उस महिला ने मुझे बताया कि उसकी नौकरानी देवकी एक ऐसे गांव से है जो कि जादू टोने आदि के लिए जाना जाता है। उसके परिवार का हर एक सदस्य प्रेत विद्या में लिप्त था। वह अब एक विश्वासी बन चुकी थी, परंतु दुष्टात्माएं निरंतर उसे सताया करती थी। देवकी महसूस करती थी कि दुष्टात्माएं रात को जब वह पलंग पर होती थी तो उसे धक्का देती थी और उसका गला दबाती थी। मैंने देवकी को वहां सभा में आमंत्रित किया और उसकी सहमति से लोगों के सामने उसे कुर्सी पर बैठाया। फिर उसकी आंखों में देखते हुए मैंने जादू टोने और प्रेत विद्या की दुष्टात्माओं को आज्ञा दी कि वे देवकी को छोड़कर निकल जाए। उसके चेहरे में ऐठन आने लगी और दुष्शक्तियों का प्रभाव साफ साफ दिखाई दे रहा था। मात्र 10 मिनट के अंदर वह पूरी तरह से आज़ाद हो चुकी थी। दोस्तों, पापों की क्षमा प्राप्त करना और बंधन से छुटकारा प्राप्त करना दोनों अलग अलग बात है। यीशु ने हमें यह दोनों ही आशीषें उपलब्ध कराई हैं। सूक्ष्म गुण गतिविधि। अधिकतर शैतानी गतिविधियां अधिक प्रकट या स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती हैं। बिना ज्ञानेंद्रियों के अभ्यास के इब्रानियों 5:14 और पवित्र आत्मा की सहायता के बिना इन सूक्ष्म गतिविधियों को पहचानना और समझना लगभग असंभव है। जो दुष्टात्माएं हमें प्रकट रूप से दिखाई या महसूस होती हैं, उनके अलावा भी बहुत सी ऐसी दुष्टात्माएं निरंतर कार्यरत रहती हैं जिन्हें हम देख और जान नहीं पाते हैं। हालांकि पूर्वी देशों के लोग स्वाभाविक रूप से एवं सहज ज्ञान से दुष्टात्मा के कार्य की समझ रखते हैं, परंतु फिर भी उनमें से अधिकतर लोग अभी भी शैतान के सूक्ष्म अर्थात छुपे हुए कार्य से अनजान हैं। मुझे अनुमति दें कि मैं आपकी आंखों को इन बातों के प्रति खोल सकूं। निम्नलिखित पदों में यीशु अपने चेलों के साथ चले जा रहे हैं और उनसे सवाल पूछने लगते हैं। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कुछ एलिया और कुछ यर्मिया या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पत्रस ने उसे उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। मत्ती 16:13-17। जब यीशु अपने चेलों से यह पूछ रहे थे कि वे व्यक्तिगत रूप से यीशु को क्या मानते हैं अथवा यीशु उनके लिए कौन है, तब पत्रस को ज्ञान का वचन प्राप्त होता है, सीधा प्रकाशन स्वर्गीय पिता की ओर से यीशु की पहचान परिचय के बारे में। जैसे ही पत्रस उत्तर देता है, यीशु तुरंत इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो उत्तर पत्रस ने दिया वह परमेश्वर की ओर से प्रकाशन है। इसके कारण पत्रस को अन्य चेलों से अपने आप को बेहतर समझने का बल मिला और उसके अंदर घमंड आया। याद रखें कि पहले से ही वे इस बात को लेकर बहस कर रहे थे कि उनमें से बड़ा कौन है। मरकुस 9:33-34। कुछ समय के बाद यीशु भविष्य में उन पर होने वाले सताव और मृतकों में से फिर से जी उठने के बारे में भविष्यवाणी करने लगे। अचानक पत्रस के स्वभाव में बदलाव देखने को मिलता है। आइए पढ़ें। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरानियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग से जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर, ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। मत्ती 16:21-23। इससे पहले कभी भी हमने नहीं देखा कि पतरस यीशु को अलग ले जाकर फटकार रहे हों या झिड़क रहे हों। झिड़कना शब्द का मूल यूनानी शब्द एपीटिबाओ है, जिसका मतलब है निंदा करना, चेतावनी देना, धिक्कारना, इल्ज़ाम लगाना। पतरस अपने आप को अपने गुरु और स्वामी से अधिक बड़ा समझने लगे और यीशु की इच्छा का विरोध और सामना करने लगे। पतरस ने ऐसा क्यों किया? पतरस एक अन्य आत्मा की सुनने एवं उस पर ध्यान और मन लगाने लगे थे। जिस आत्मा की पतरस सुन रहे थे वह पवित्र आत्मा नहीं था, वरन धोखा देने वाला अंधकार का आत्मा था। हो सकता है कि कुछ समय पहले पतरस ने स्वर्गीय पिता की आवाज़ को जो सुना था, उस कारण उसके अंदर घमंड आ गया था और उस घमंड ने उसे ऐसा बहिरा कर दिया था कि वह शैतान एवं परमेश्वर की आवाज़ में अंतर नहीं कर पा रहा था। याद रखें कि हमें धोखा देने के लिए शैतान एक ज्योतिर्मय सरदूत का रूप धारण करके हमारे पास आता है। 2 कुरिन्थियों 11:14। यीशु तुरंत पतरस की ओर मुड़कर उससे कहते हैं, शैतान मेरे सामने से दूर हो। यहाँ पर यीशु ने मूल यूनानी शब्द हुपागो का इस्तेमाल किया, जो कि यीशु ने जंगल में परीक्षा के समय शैतान को डांटने के समय इस्तेमाल किया और बोला था। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा। 4:10। इसका मतलब यह है कि यीशु ने पतरस के अंदर से शैतान को बाहर निकाला, क्योंकि शैतान पतरस के विचारों और भावनाओं के अंदर था और उस पर ऐसा प्रभाव डाल रखा था कि पतरस का अपनी इच्छा पर नियंत्रण ही नहीं रहा था। क्या यहाँ पर दुष्ट आत्मा का कोई प्रत्यक्ष प्रकटीकरण, जैसे कि मरोड़ना, चीखना, चिल्लाना या जोर से हिलना या कांपना आदि कुछ दिखाई देता है? नहीं, पतरस स्वयं भी उन विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को नहीं पहचान या जान पा रहे थे जिन्होंने पतरस को इस प्रकार से बोलने और व्यवहार करने के लिए मजबूर किया था। जब शैतान पतरस के अंदर से निकला, तब क्या पतरस के मुंह से झाग निकला या फिर क्या वह जमीन पर गिरकर किसी मछली के समान तड़प रहा था? नहीं, पतरस को जरा सा भी एहसास नहीं था कि किस समय शैतान ने उस पर कब्जा कर लिया था। जब यीशु ने पतरस के अंदर के शैतान को बाहर निकाला, तब किसी प्रकार का अजीब प्रकटीकरण नहीं हुआ, परंतु पतरस शैतान से आज़ाद जरूर हो गया। दुष्ट आत्माओं की छिपी हुई एवं परोक्ष गतिविधियों को पहचानने में समस्या यह है एवं इस कारण है कि हर एक दुष्ट या बुरी गतिविधि के पीछे का कारण जरूरी नहीं हमेशा दुष्ट आत्मा ही हो। मनुष्य का पापमय स्वभाव, जिसके कारण मनुष्य का स्वभाव स्वाभाविक रूप से दुष्ट एवं बुरी प्रवृत्ति का बन गया है, उसके अंदर यह क्षमता है कि दुष्ट आत्माओं की सहायता के बिना भी पाप कर सके। दूसरा कारण यह है कि संसार की पद्धति प्रणाली एक भ्रष्ट संस्कृति है, जहाँ मतलबीपन और दुष्टता पाई जाती है। तीसरा कारण यह है कि गलत सोच और झूठ प्रायः गलत व्यवहार को प्रेरित करने एवं बढ़ावा देते हैं। तो भी झूठ केवल झूठ के पिता शैतान की ओर से आती है और संसार का तंत्र उसी की उपज या उत्पाद है। 1 यूहन्ना 5:19। हालांकि हमारे अंदर दुष्ट आत्माओं के बिना भी पाप करने की क्षमता है, परंतु फिर भी हम इस पतित संसार को उसके प्रभाव से अलग नहीं कर सकते हैं। पाश्चात्य मसीहियत दुष्ट आत्माओं की व्यवहारिक वास्तविकता को खारिज करती है और पाप के कार्यों के लिए शरीर को दोषी ठहराती है, और उसके लिए वे गलातियों की पत्री के 5 अध्याय का हवाला देते हैं। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। 5:19-21। जब आप इस उपरोक्त सूची को पढ़ते हैं तो क्या यहाँ कोई ऐसा पाप जिससे आप जानते हो कि बुद्धिमता की जरूरत पड़ती हो, जैसे कि मूर्ति पूजा, टोना और विधर्म। मनुष्य की शारीरिक देह इस पाप को करने में सक्षम या समर्थ नहीं है, क्योंकि इसके लिए दुष्टात्माओं की बुद्धिमता की जरूरत होती है। क्या ये पाप शारीरिक देह के कारण होते हैं, या फिर इन पाप को करवाने के लिए दुष्टात्माएं शरीर को प्रभावित या प्रेरित करती हैं? क्या हमारा युद्ध वास्तव में शरीर के विरुद्ध है? क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। गलातियों 6:12। प्रेरित पौलुस हमें अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं और बताते हैं कि एक विश्वासी का युद्ध उसके मानवीय स्वभाव से नहीं है, क्योंकि हमारा पुराना मनुष्यत्व स्वभाव मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, मर गया और नाश हो गया है। रोमियों 6:6, 7, 11 और 18। हम विश्वासी अपने पतित पुराने मनुष्यत्व एवं स्वभाव के साथ संघर्ष नहीं करते, क्योंकि हम मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं। 2 कुरिन्थियों 5:17। हमारा युद्ध उन दुष्ट शक्तियों से है जो कि शरीर को प्रभावित और प्रेरित करके उसके द्वारा दुष्टता के कार्य करने का अवसर ढूंढती रहती है। आप स्वयं अपने शत्रु नहीं हैं, आपका शरीर आपका शत्रु नहीं है। हम विश्वासियों को अपनी बुद्धि को नया करने की ज़रूरत है, रोमियों 12:2, और जरूरत है कि शैतान का सामना करने की, याकूब 4:7, जिससे कि स्थायी स्वतंत्रता आज़ादी कायम रहे। 3 व्यवहारिक सवाल। तो हम कैसे यह जान सकते हैं कि दुष्ट आत्माएं मौजूद एवं कार्यरत हैं? पवित्र आत्मा की सहायता के बिना हर बार यह जान पाना लगभग असंभव है, लेकिन दुष्ट आत्माओं को निकालने के मेरे कई साल के अनुभव के आधार पर मैंने 3 बुनियादी सवालों की सूची तैयार की है, जो कि अद्भुत रूप से अधिकतर लोगों के लिए विभिन्न परिस्थितियों में बिल्कुल सटीक है। ज़्यादातर छिपी हुई दुष्ट आत्माओं की गतिविधियों, विचारों, भावनाओं और इच्छाओं के रूप में प्रकट होती है और अंत में व्यवहार का रूप लेकर प्रकट होती है। विचार, भावनाएं और इच्छाएं ही हमारे प्राण और शरीर में दुष्ट आत्माओं का रूप लेकर प्रकट होती है। पहला प्रश्न, क्या आप ऐसी भावनाओं, विचारों और इच्छाओं को महसूस एवं अनुभव करते हैं जो कि बार बार आपके जेहन में आती है और जिन्हें आप बदल नहीं पा रहे हैं? उस मच्छर के समान जो आधी रात में आपको कष्ट देता और सताता है, भय के विचार, कामुक चित्र, न ठंडा होने वाला क्रोध, यह भावना कि आपको सबने छोड़ दिया आदि, जो कि आपको छोड़ नहीं रहे हैं, आपकी उनसे छुटकारा पाने की लाख कोशिश के बाद भी आप उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा प्रश्न, क्या आप ऐसे विचार, भावनाओं और इच्छाओं को महसूस करते हैं जो कि अक्सर कुछ समय के लिए आपको पूरी तरह से प्रभावित और नियंत्रित करते हैं? अचानक अपने आप को ऐसे विचारों, भावनाओं और इच्छाओं के कब्जे में पाते हैं जो कि आपको नियंत्रित करती हैं, और बाद में उसका पछतावा या मलाल भी होता है। बहुत से अगुओं और विश्वासियों ने इस बात को मेरे सामने स्वीकार किया है कि किस प्रकार से उनके जीवन साथी, पति या पत्नी के साथ छोटी सी असहमति के कारण वे जोर से चीखने चिल्लाने लगते हैं या फिर शारीरिक नुकसान तक पहुँचाते हैं, और उनके तुरंत बाद उन्हें अपने इस व्यवहार पर पछतावा होता है और वे दुखी होते हैं। इस प्रकार के लोग हर बार फैसला करते हैं कि आगे को भविष्य में इस प्रकार का व्यवहार फिर कभी नहीं करेंगे, परंतु हर बार अपने आप को किसी नियंत्रित करने वाली शक्ति के कब्जे में पाते हैं। तीसरा प्रश्न, क्या आप ऐसे विचार, भावनाओं और इच्छाओं को महसूस करते हैं जो कि किसी नियत या विशेष माहौल, गतिविधियों या परिस्थितियों में तेज हो जाती या बढ़ जाती है, जैसे कि बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, अकेले रहना, किसी नियत स्थान पर कुछ विशेष लोगों के साथ रहना या समय बिताना आदि? बहुत से नए विश्वासी जो कि पहले मूर्ति पूजा किया करते थे और उन्हें जन्म के समय मूर्ति के सामने समर्पित किया गया था, या फिर वे जादू टोने में लिप्त रहा करते थे, ऐसे लोगों को बाइबल पढ़ने और प्रार्थना करने में कठिनाई महसूस होती है। अचानक उन्हें नींद आने लगती है और जागे रह पाना उन्हें मुश्किल जान पड़ता है, और किसी प्रकार की दीवार परमेश्वर के साथ होने वाले उनके मेल या संपर्क को रोकती है। कुछ अन्य लोग ग्लानि, दोष भावना, शर्म या भय के कारण प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। कुछ अन्य जबरदस्त कामुक इच्छाओं को महसूस करते हैं, ऐसे इच्छाएं जिन्हें तृप्त संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। जब आप लोगों से ये सवाल पूछते हैं और यदि कोई व्यक्ति हाँ में उत्तर देता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उस व्यक्ति में दुष्ट आत्मा कार्यरत संभव है। और यदि दो या तीन सवाल के उत्तर में वे हाँ कहते हैं, तो फिर निश्चित रूप से दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के अंदर उपस्थित है। जेकब नाम का एक व्यक्ति जो कि अफ्रीका में कलीसिया रोपण कर रहा था, एक बार हमारे ट्रेनिंग सत्र में भाग लेने और बीमारों के लिए प्रार्थना कराना और दुष्ट आत्माओं को निकालना सीखने के लिए चंडीगढ़ भारत में आया, जहां पर हम आसपास के लगभग 30 पास्टर के लिए छुटकारे का सेमिनार आयोजित कर रहे थे और शिक्षा दे रहे थे। शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत जेकब ने हमसे आग्रह किया कि हम उसके लिए प्रार्थना करें। जेकब ने चुपचाप रहते हुए 15 साल तक दुष्ट आत्मा के बंधन को सहा था। वह PTSD पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर सह रहा था, अर्थात किसी बड़े आघात को झेलने के बाद की अवस्था। शहर के नए कॉलेज में दाखिला लेने के बाद जब वह लड़कों के शौचालय में दाखिल हुआ, तो 3 सीनियर लड़कों ने बिना किसी कारण उसको मारा पीटा, उसके कपड़ों को फाड़ डाला और जबरन उसके साथ बलात्कार किया। इसके उपरांत वे हंसते हुए जेकब को बाथरूम के फर्श पर खून से लथपथ पड़ा हुआ छोड़कर बढ़ चले। इस आघात का परिणाम बहुत भयानक था। जेकब को समझ नहीं आ रहा था कि इस दुष्कृत के विषय में किसको बताएं और क्या करें। कुछ हफ्ते के बाद जेकब कॉलेज काउंसलर के पास पहुंचा और उसे जाकर सारी घटना बताई, परंतु काउंसलर ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। उस आघात का परिणाम यह था कि जेकब के मन मस्तिष्क में भय बैठ गया एवं वह उत्कंठित रहने लगा। उस दिन के पश्चात जेकब के लिए किसी सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल करना लगभग असंभव सा हो गया था। जब भी वह किसी सार्वजनिक शौचालय में प्रवेश करता, तब भय से भर जाता था और भय उसके मूत्राशय और आंतों को काम करने से रोक देता था। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल कर ही नहीं पाता था, अपने घर के व्यक्तिगत शौचालय में ही हल्का हो पाता था। वह अफ्रीका से लंबी यात्रा करके भारत आया और भारत में गांव-गांव घूमा, और मुझे पता चला कि इस दौरान पिछले 7 दिन से उसे शौच नहीं हुई थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी हमने प्रार्थना का समय तय किया और इस अध्याय के अंत में जो दिशा निर्देशक दिए गए हैं उनके अनुसार हमने उसके लिए प्रार्थना की। उसे अचंभा हुआ कि प्रार्थना के दौरान किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा का प्रकटीकरण नहीं हुआ, जबकि मैंने भय और सताने वाले दुष्ट आत्मा को डांटा और निकल जाने का आदेश दिया। तब जेकब ने शांति और परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया। जिस समय से मैंने उन दुष्ट आत्माओं को निकल जाने की आज्ञा दी थी, उसी समय से वो आज़ाद हो गया और तुरंत उसने जाकर शौच किया, और इसके बाद किसी भी सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल बिना किसी भय या परेशानी के करने लगा। 15 साल का बंधन तुरंत टूट गया और आज तक टूटा हुआ है। हमारे छुटकारा देने वाले यीशु की स्तुति हो, उसने अपनी महान करुणा प्रकट की है। पाश्चात्य जगत में जिस समस्या को PTSD नाम दिया गया है, यौन लिंग भ्रम, सेक्सुअल कन्फ्यूजन, लत एवं व्यसन, तनाव संबंधी विकार और अवसाद, डिप्रेशन और कुछ ना होकर महज अदृश्य परजीवी दुष्ट आत्माएं ही हैं। दुष्ट आत्माओं के सताव की सूची। शारीरिक प्रभाव। पहला बिंदु, विभिन्न प्रकार की एलर्जी, प्रतिरक्षा की कमी, इम्यून डिफिशियंसी। दूसरा बिंदु, स्वप्रतिरक्षित रोग, ऑटो इम्यून डिजीज। तीसरा बिंदु, फाइब्रोमायलेजा। चौथा बिंदु, नर्व रिलेटेड डिजीज, नस संबंधी रोग। पांचवा बिंदु, मनोदैहिक रोग, साइकोसोमैटिक इलनेस। प्राण संबंधी प्रभाव। पहला बिंदु, कटुता क्षमा ना करना, अक्षमशीलता, क्रोध, बदला, नफरत, हत्या। दूसरा बिंदु, भय, चिंता, उत्कंठा, व्यग्रता, घबराहट, परमेश्वर पर भरोसा न कर पाना, अपने आप को अकेला या त्यागा हुआ महसूस करना। तीसरा बिंदु, अवसाद, आशाहीनता। चौथा बिंदु, तिरस्कृत महसूस करना, ग्लानी, अपराध बोध या स्वयं को दोषी मानना, शर्म। पांचवा बिंदु, घमंड, अहंकार, आत्मनिर्भरता, कुछ भी सीखने की इच्छा ना रखना, अति धार्मिक, फरीसी जैसा होना। छठवां बिंदु, आत्म घृणा, आत्म अस्वीकृति, स्वयं को माफ ना करना, स्वयं पर क्रोधित होना, आत्महत्या के विचार और इच्छा। सातवां बिंदु, काम वासना, अश्लील चित्रों को देखना, व्यविचार, समलैंगिकता और अन्य गंदी और अशुद्ध इच्छाएं। आत्मिक प्रभाव। पहला बिंदु, जादू टोने के प्रति जिज्ञासा और आकर्षण। दूसरा बिंदु, प्रार्थना, बाइबल पढ़ने और मनन करने में रुकावट, जैसे कि ध्यान केंद्रित ना कर पाना, नींद आना। तीसरा बिंदु, रात में भयभीत होना। चौथा बिंदु, शैतानी आवाजें सुनना और दुष्ट आत्माओं को देखना। पांचवा बिंदु, दुष्ट आत्माओं का शरीर पर हमला, जैसे गला दबाना, पकड़ लेना, गिरा देना, बोलने या हिलने डुलने में असमर्थ हो जाना। सेवकाई की मानसिकता। दुष्ट आत्माओं को निकालने का हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रेम होना चाहिए। बड़े ही दुख की बात है कि मैंने भारत और अफ्रीका में ठीक उसका उल्टा ही देखा है। यदि किसी व्यक्ति में दुष्ट आत्मा का प्रकटीकरण होता है तो वह व्यक्ति पास्टर के द्वारा उत्पीड़न का शिकार बन जाता है। पास्टर ऐसे लोगों को बाइबल मारकर पिटाई करता है, उनके चेहरे पर पानी फेंकता है, उन्हें मजबूर किया जाता है कि वे पानी या तेल को यीशु का लहू मानकर पी लें, और उन्हें कसकर पकड़ लिया जाता है। उनकी शारीरिक गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए उनके बालों को पकड़कर खींचा जाता है। एक समय मैंने देखा कि एक जवान लड़की को कई बुजुर्ग लोगों ने और कलीसिया के प्राचीनों ने कसकर पकड़ रखा था और जोर जोर से चिल्लाकर दुष्ट आत्मा को उस लड़की में से निकल जाने की आज्ञा दे रहे थे। बाद में मुझे पता चला कि वह लड़की अपने बचपन में सामूहिक दुष्कर्म, गैंग रेप का शिकार हुई थी, और यहाँ पर छुटकारे के नाम पर कलीसिया के लोग उसे घेर कर उसे पकड़े हुए हैं, जिसके कारण उसे उसके अतीत का बुरा और दिल दहलाने वाला मंजर फिर से याद दिलाया जा रहा है। मित्रों, दुष्ट आत्मा के द्वारा सताए गए लोगों को हमारे प्रेम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हालांकि हम दुष्ट शक्तियों के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे हैं, फिर भी हमें उस व्यक्ति को प्रेम करना, उसका आदर करना और उसकी कद्र करना कभी नहीं भूलना चाहिए, जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। जब लोग हमें अपने जीवन की व्यक्तिगत बातें बताते हैं तो उन बातों को कभी भी औरों को नहीं बताना चाहिए। हमें उन लोगों के भरोसों को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और अपनी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पढ़ो। गलातियों 6:1, हमारी आत्मिकता इसी बात से पता चलती है कि जब हम किसी मनुष्य को पाप में गिरा या फंसा हुआ पाते हैं तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है। बहुत सी पापी आदतें और तरीके दुष्ट आत्माओं के द्वारा प्रेरित होती हैं। हमें उसे बड़ी नम्रता और कोमलता से बहाल करना है। बहुत से लोग दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोगों को बुरी तरह से कलंकित और बुरा व्यक्ति समझते हैं। हमें इस तरह के सोच को बदलना होगा ताकि लोग आसानी और सहजता से अपने छुटकारे के लिए प्रार्थना कराने के लिए आ सकें। जिस समय मध्य पूर्व के बहुत से मुस्लिम लोग अपने देश को छोड़कर जान बचाकर भाग रहे थे और यूरोप के देशों में शरण ले रहे थे, उन दिनों जर्मनी में हैमबर्ग शहर में जाकर मुस्लिम भाई बहनों के बीच यीशु का प्रेम बांटने का मुझे अवसर मिला। इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैंने सुसमाचार की छुटकारा प्रदान करने वाली सामर्थ को उन लोगों के बीच प्रकट करने का फैसला किया। एक शाम लगभग 20 मुस्लिम लोग एक कमरे में जमा थे और मैं मरकुस 1:21-28 में वर्णित घटना को उन्हें बताने लगा। उसके उपरांत व्हाइट बोर्ड पर मैंने बहुत सी समस्याओं, लतों, चिंता, विकारों की सूची बनाकर लिखने लगा, जो कि दुष्ट आत्माओं के कारण व्यक्ति पर कब्जा करती है और सताती है। वहां पर मौजूद लोग पढ़े लिखे थे और कुछ लोग मेरी बात पर मुस्कुरा रहे थे। इसके बाद प्रार्थना करने और परमेश्वर की सामर्थ का प्रगटीकरण करने का समय आया और मैंने उनसे पूछा कि व्हाइट बोर्ड पर लिखी समस्या, लत, चिंताएं या विकारों से कोई पीड़ित यहाँ पाया जाता है क्या। लगभग 28 से 30 साल का दंपति वहाँ पर मौजूद था। वह महिला निकलकर आगे की ओर आए और मेरे सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। उसने बताया कि किस तरह से वह उत्कंठा, चिंता और रात को दिखाई देने वाले डरावने सपनों से जूझ रही है और परेशान है। मैंने वहाँ मौजूद लोगों से कहा कि वे ध्यानपूर्वक सब कुछ देखें। मैंने उस महिला की आंखों में देखते हुए दुष्टात्मा को आज्ञा दी, डराने और सताने वाली आत्मा, मैं यीशु के नाम में तुझे बांधता हूँ और आज्ञा देता हूँ कि इस महिला में से अभी निकल जा। उस महिला का व्यवहार कुछ बदल सा गया और वह उत्कंठित और परेशान से दिखाई देने लगी। ज़्यादातर लोग मुझे पागल समझ रहे थे। मैंने उस महिला से पूछा कि वह कैसा महसूस कर रही है और उसने कहा, मैं बेचैनी महसूस कर रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे गले में कुछ अटक रहा है और मुझे सांस लेने में कठिनाई महसूस हो रही है। मैंने फिर से उस महिला की आंखों में देखा और कहा, इसके गले में पीड़ा देने वाले शैतान, मैं तेरा सामना करता हूँ और तुझे निकल जाने की आज्ञा देता हूँ, निकल जा। तुरंत वह महिला पीछे की ओर झुकी। एक दुष्शक्ति ने उस पर कब्जा कर लिया था और वह अपने हाथों को हवा में लहराने लगी और अजीब आवाज़ें उसके मुँह से निकलने लगी। अभी तक वो लोग मेरा मजाक बना रहे थे, वे सब डर गए। मैंने उस महिला के पति से कहा कि वह उस महिला को लेकर एक दूसरे कमरे में आ जाए जहां हम उसकी निजता का ख्याल रख सकें और वह लोगों के सामने किसी प्रकार से हंसी का पात्र ना बने। कुछ मिनट के भीतर वह महिला पूरी तरह से स्वतंत्र हो गई। जब मैं वापस लौटकर उस कमरे में आया जहाँ पर सब लोग इकट्ठा थे, तो मैंने पाया कि मेरी टीम के लोग वहाँ मौजूद लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और वहाँ मौजूद लोगों में से कोई भी बिना छुटकारा पाए वापस नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वे जान चुके थे कि जिन समस्याओं, लतों, चिंताओं और विकारों को मैंने बोर्ड पर लिखा था, उनमें से बहुत सी बातों से वे परेशान थे और संघर्ष कर रहे थे। वह मीटिंग 3.5 घंटे तक चली। उस महिला और उसके पति ने यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया और आगे चलकर वे दोनों बहुत से मुस्लिम लोगों को यीशु के पास लाने वाले एक आंदोलन के अगुए बने। मसीह की विजय। जैसे कि मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया था कि अपनी या किसी की बीमारी की चंगाई के लिए विश्वास करना कोई बुनियादी आधारहीन उम्मीद मात्र नहीं है। ये ही बात दुष्ट आत्माओं से छुटकारे और दुष्ट आत्माओं को निकल जाने की आज्ञा देने पर सच्ची और खरी उतरती है। यीशु का नाम कोई जादुई मंत्र नहीं है। जो भी आज्ञा हम दुष्ट आत्मा को देते हैं वह बेबुनियाद और आधार ही नहीं होनी चाहिए। जब हम शैतान को बांधते हैं और निकल जाने की आज्ञा देते हैं, तो पीड़ित व्यक्ति के छुटकारे के लिए हमारे पास विश्वास की एक मजबूत उम्मीद होनी चाहिए। छुटकारा तब सफल और सार्थक होता है जब हम पिता और पुत्र के द्वारा पूरे किए गए उस कार्य पर भरोसा जताते हैं, पवित्र आत्मा के साथ सहभागी बन जाते हैं और परमेश्वर के द्वारा हमें दिए गए अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। निम्नलिखित पदों पर ध्यान दें। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करें। 1 यूहन्ना 3:8। यीशु अपने मिशन अथवा जिस कार्य को करने आया था उसे पूरा करने में नाकाम नहीं रहा। शैतान के कामों का नाश हुआ है। जब हमारा सामना शत्रु से होता है तो हमें आत्मिक रीति से यह समझना है कि शैतान के काम नाश हुए हैं। यह बात हमारे विश्वास का कारण है। चंगाई के लिए प्रार्थना करते समय कि यीशु ने हमारे बीमारियों को स्वयं सह लिया है या उठा लिया है, ठीक इस प्रकार से यीशु के द्वारा शैतान के कार्यों को नाश करना हमारी दुष्ट आत्माओं से आज़ादी और छुटकारे की उम्मीद का कारण है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। कुलूसियों 2:15। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी अपने समान उनका सहभागी हो गया ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। इब्रानियों 2:14। यीशु ने मनुष्य के प्रायश्चित के लिए बलिदान होने के द्वारा शैतान और उसकी सेना को निर्बल या शक्तिहीन बना दिया है। जब भी आपका सामना दुष्ट आत्मा से होता है तो आपको यह सच्चाई जाननी या याद रखनी चाहिए कि वे आपके सामने कमज़ोर, शक्तिहीन और बेबस हैं। आपकी आज्ञा आदेश का वो सामना करके आपके सामने खड़े नहीं रह सकती हैं। उसी पिता ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। कुलुसियों 1:13। पिता ने आपको शैतान की हर एक सामर्थ और प्रभाव से छुड़ाया एवं आज़ाद किया है। उसने अंधकार से छुड़ाकर आपको यीशु के राज्य में पहुंचाया है, यीशु मसीह में, जो आपकी आत्मिक गौरवपूर्ण स्थिति या पद जो स्थापित हो चुका है। उस गौरवपूर्ण स्थिति अर्थात पद के कारण जब आप शैतान का सामना करेंगे तो वह निश्चय ही आपके सामने से भाग निकलेगा। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में पहले से बंधा हुआ होगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में पहले से खुला हुआ होगा। मत्ती 16:19। हम अंधकार को इसलिए बांधते हैं, अंधकार के कार्यों को नाश होने की आज्ञा इसलिए देते हैं और दुष्ट आत्मा को निकल जाने की आज्ञा इसलिए देते हैं क्योंकि अंधकार और शैतान के कार्य पहले ही बांधे जा चुके और नाश किए जा चुके हैं। हम शैतान को इस आशा से नहीं बांधते हैं कि शायद हमारे बांधने से वह बन जाएगा, परंतु हम शैतान को इसलिए बांधते हैं क्योंकि वह पहले ही हार चुका है, कुचला जा चुका है और शक्तिहीन और निर्बल किया जा चुका है। जो कुछ भी आत्मिक क्षेत्र में पहले ही घटित हो चुका है उसका विश्वास इस पृथ्वी पर उसी को दर्शाता प्रकट करता है। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। लूका 9:1। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। लूका 10:19। आपको अधिकार और सामर्थ तो निश्चित रूप से मिले हैं, परंतु पिता और पुत्र के द्वारा पूरे किए गए कार्य पर आप कितना विश्वास और भरोसा रखते हैं इसी पर आपका अधिकार और प्रभाव निर्भर करता है। जितना अधिक पिता और पुत्र के द्वारा पूरे किए गए कार्य पर आप विश्वास और भरोसा रखेंगे उतने ही प्रभावी रूप से आप शैतान पर अपने अधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसी कारण जो कुछ भी स्वर्ग में बांधा जा चुका है केवल उसी को आप इस पृथ्वी पर बांध सकते हैं। अपने अधिकार का इस्तेमाल अंधकार से वास्तविक आज़ादी पाने या प्रदान करने के लिए ही करें। यीशु की शैतान पर विजय आत्मिक क्षेत्र में वास्तविकता है, परंतु आपका विश्वास वह कड़ी है जो यीशु की आत्मिक क्षेत्र में हुई विजय का अनुभव हमें पृथ्वी पर कराता है। दुष्ट आत्माओं को निकालने के व्यवहारिक कदम। कदम 1, 3 सवालें पूछें और पहचानने समझने की कोशिश करें कि किस प्रकार से दुष्ट आत्मा पीड़ित व्यक्ति को उत्पीड़न या परेशान कर रही है। आप इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि पीड़ित व्यक्ति उत्पीड़न का सामना किस प्रकार से कर रहा है, किस प्रकार का उत्पीड़न सह रहा है। कदम 2, जो व्यक्ति छुटकारा पाने के लिए आया है उससे समर्पण की यह प्रार्थना करने को कहें। यीशु, मैं जैसा भी हूँ आपके पास छुटकारे के लिए आता हूँ। मैं इस समय अपनी आत्मा, प्राण और शरीर को आपको सौंपता हूँ और घोषणा करता हूँ कि आप मेरे प्रभु हैं। मेरे अंदर या मुझ पर जो भी दुष्ट आत्मा है मैं उसे रोकता हूँ कि छुटकारे की प्रतिक्रिया और प्रार्थना के दौरान किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना करे। दुष्ट आत्मा, तू मेरा ध्यान नहीं बटा सकती और मेरे अंदर से या मेरे द्वारा प्रगटीकरण नहीं कर सकती और तुझे यीशु के नाम में चुपचाप और शांत रूप से निकलना होगा। कदम 3, पवित्र आत्मा की उपस्थिति व्यक्तित्व और सामर्थ को आमंत्रित करें। पीड़ित व्यक्ति और दुष्ट आत्मा की ओर कम ध्यान देते हुए पवित्र आत्मा की ओर अधिक ध्यान केंद्रित करें। उसकी उपस्थिति के प्रति जागरूक बने रहें और उसकी आवाज़ सुनने को तत्पर और तैयार रहें। परिचालन, जब मैंने किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ जो कि दुष्ट आत्मा के उत्पीड़न का शिकार है तो दुष्ट आत्मा को आज्ञा देते समय मैं उत्पीड़ित व्यक्ति की आंखों में देखता हूँ। हालांकि वचन में तो ऐसा कोई निर्देश नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी यह तरीका मुझे बहुत प्रभावी लगता है। कदम चार, सख्ती दिखाते हुए अधिकार के साथ बिना चिल्लाए अशुद्ध आत्मा को उसकी गतिविधियों का वर्णन करते हुए पीड़ित व्यक्ति को छोड़कर चले जाने की आज्ञा दें। दुष्ट आत्माओं के नाम बेमानी हैं। यदि अवसाद, वासना, क्रोध आदि की आत्मा है तो उस गतिविधि का नाम लेकर दुष्ट आत्मा को संबोधित करें, जैसे कि वासना की आत्मा या स्वप्न में सताने वाली आत्मा। जब आप शैतानी आत्मा को आज्ञा आदेश देते हैं तो अध्याय 8 में जैसा बताया गया है उसी के अनुसार आत्मा से जरूर प्रार्थना करें और शैतान को अपनी कल्पना और सोच में से बाहर निकलते हुए देखें। उदाहरण, डराने और सताने वाली आत्मा, मैं तुझे अभी बांधता हूँ और तेरी उपस्थिति और गतिविधियों को राकेश के जीवन में से रोकता हूँ। मैं तेरे प्रभाव को समाप्त करता हूँ और ये तुझे यीशु के नाम में कहता हूँ कि निकल जा। तू इस व्यक्ति में नहीं बनी रह सकती और ना ही मेरा सामना कर सकती है। तू कमज़ोर और बेबस है, शैतान निकल जा। कदम पाँच, पीड़ित व्यक्ति के ऊपर हाथ रखकर पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ को आमंत्रित करें और पवित्र आत्मा से कहें कि वह पीड़ित व्यक्ति के अंदर आए और उसे इस प्रकार भरे कि उसके अंदर अंधकार के लिए अब कोई स्थान ना हो। जो भी नबुवत के शब्द पवित्र आत्मा आपको देता है उन्हें बोलें। जहां कहीं भी अंधकार है वहां पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति भर जाए यह विश्वास करें। उदाहरण, पवित्र आत्मा आए और राकेश को अपनी उपस्थिति और सामर्थ्य से भर दें। दुष्ट आत्माओं को भगाएं और राकेश को अपनी ज्योति, सत्य और उपस्थिति से भर दें। परमेश्वर की आत्मा आप बहें और राकेश को भर दें। कदम छः, अमुक व्यक्ति से पूछें कि इस दौरान उसने क्या और कैसा महसूस किया। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों अनुभव पूछें। नीचे दिए गए चार्ट में दोनों सकारात्मक और नकारात्मक अनुभव है जिनसे होकर लोग अक्सर गुजरते हैं। यदि इस समय कुछ ऐसे नकारात्मक प्रभाव पता चल रहे हों जो कि अधिक गंभीर नहीं हैं, तो उन्हें नज़रअंदाज करते हुए अगले कदम की ओर बढ़ चलें। यदि वे प्रभाव बहुत अधिक विचलित करने वाले और कमज़ोर कर देने वाले हैं तो उन्हें बांधें और रुक जाने की आज्ञा दें। यदि अमुक व्यक्ति को छुटकारा मिल गया है या फिर आपको लगता है कि उस व्यक्ति को छुटकारा मिल गया है तो सीधे 9वें कदम की ओर बढ़ चलें। यदि उस व्यक्ति ने पूरी आज़ादी और छुटकारे को महसूस नहीं किया तो 7वें कदम की ओर बढ़ें। सकारात्मक प्रभाव, महसूस करना कि कुछ निकल कर बाहर गया है, खालीपन महसूस करना, शरीर में हल्का महसूस करना कि मेरे ऊपर से भारी वजन उठ गया है, शांति और आराम महसूस करना। नकारात्मक प्रभाव, भारीपन महसूस करना, सांस लेने में परेशानी महसूस करना, बोल नहीं पाना, महसूस करना कि गले या छाती में कुछ अटक रहा है, सिर में दर्द होना, शरीर में दर्द होना, शरीर अकड़ जाना आदि। कदम सात, फिर से पवित्र आत्मा की ओर ध्यान लगाएं और दुष्ट आत्माओं को चले जाने की आज्ञा दें। उन्हें बांधें और वहां पर बने रहने से रोकें। आज्ञा देने और डांटने के बीच बीच में दुष्ट आत्माओं के विरुद्ध वचन को बोलें। पीड़ित व्यक्ति से कहें कि वह भी दुष्ट आत्माओं को चले जाने की आज्ञा दे। आपके पीछे पीछे पवित्र शास्त्र के वचन को दोहराएं। यदि जरूरत पड़े तो इस प्रक्रिया को कई बार दोहराएं। उदाहरण, दुष्ट शैतानों तुम हारे हुए हो, यीशु ने तुम्हें कुचला और लज्जित किया है, तुम कमज़ोर और शक्तिहीन हो, इसी समय निकल जाओ। मैं यीशु के नाम में तुम्हें बांधता और कुचलता हूँ, तुम यहाँ पर बने नहीं रह सकते और ना ही मेरा सामना कर सकते हो। यीशु के नाम और अधिकार में मैं तुम्हें निकालता हूँ, शैतान तेरे सब कार्य नाश हुए हैं, तू हार गया और प्रबल नहीं हो सकता। निर्बल शैतानों अभी निकल जाओ। पिता ने राकेश को अंधकार के कब्जे से छुड़ाया है, इसलिए यहाँ पर तुम्हारा राज्य, क्षेत्र और प्रभुत्व नहीं है। यीशु प्रभु है और तुम यहाँ से निकाले गए हो। यीशु का लहू राकेश के ऊपर है और यहाँ पर तुम्हारा कोई वश नहीं चल सकता। यीशु के नाम में आज़ाद होने की आज्ञा देता हूँ। ध्यान दें, यदि अमुक व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो दुष्ट आत्माओं को शांत हो जाने की आज्ञा दें और लगातार पीड़ित व्यक्ति का नाम तब तक पुकारते रहें जब तक कि वह फिर से होश में नहीं आ जाता और दुष्ट आत्माओं का सामना करने के लिए आपके साथ सम्मिलित नहीं हो जाता। कदम 8, कदम 6 को दोहराएं। सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव और अनुभव को उत्पीड़ित व्यक्ति से पूछते हुए यदि उस व्यक्ति को छुटकारा मिल गया है तो कदम 9 की ओर बढ़ जाएं। यदि नहीं तो कदम 7 और कदम 8 को तब तक दोहराते रहें जब तक कि वह पीड़ित व्यक्ति पूरी तरह से आज़ाद नहीं हो जाता है। कदम 9, उस व्यक्ति के छुटकारे के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें और कराएं। हर उस क्षेत्र में पवित्र आत्मा की भरपूरी को मांगे जहां पर अंधकार का साम्राज्य था। उस व्यक्ति से कहें कि वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने छुटकारे की गवाही दे, जैसे कि बीमारी की दुष्ट आत्माएं वापस लौटकर चंगाई पाए हुए व्यक्ति में बीमारी के लक्षण फिर से लाने की कोशिश करती है। ठीक उसी प्रकार से निकाली गई दुष्ट आत्माएं जिस शरीर से निकाली जाती हैं वहां पर फिर से आकर उस शरीर घर पर अपना कब्जा करने की कोशिश करती हैं। छुटकारा पाए हुए व्यक्ति को यीशु मसीह की शैतान पर विजय, पवित्र आत्मा की शिक्षा और विश्वासी को परमेश्वर के द्वारा दिए गए अधिकार की शिक्षा देना बहुत मददगार साबित होता है। उस व्यक्ति के लिए भविष्य में भी शैतान का सामना करने और दुष्ट आत्माओं से आज़ाद बने रहने में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से ध्यान देने के लिए व्यवहारिक प्रश्न। पहला प्रश्न, इस अध्याय को पढ़ने से पहले दुष्ट आत्माओं की गतिविधियों को जानने समझने में आप कितने सक्षम थे? क्या आपने अपनी आंखों के सामने दुष्ट आत्माओं का प्रकटीकरण पहले कभी देखा है? आत्मिक क्षेत्र को जानने समझने के मामले में आपका सोच और नज़रिया क्या पूर्वी देशों के लोगों जैसा है या फिर पश्चिमी देशों में रहने वाले लोगों के समान है? दूसरा प्रश्न, दुष्ट आत्मा की छिपी हुई गतिविधियों का अध्ययन करने के दौरान क्या आपको किसी ऐसी आत्मा का एहसास हुआ है जो कि संभवतः आपके अंदर कार्य कर रही है? यदि हाँ तो किस प्रकार से दुष्ट आत्मा छिपे हुए रूप से आपके अंदर कार्यरत है? तीसरा प्रश्न, जब हम पाप के विरुद्ध अपने शरीर को संघर्ष या युद्ध का स्रोत समझने की गलती करते हैं तो किस प्रकार से हम दुष्ट आत्माओं को अपना हमला जारी रखने की अनुमति दे सकते हैं? क्या आप अब पहचान पाए हैं कि शरीर के साथ होने वाला यह संघर्ष या युद्ध विभिन्न प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं? चौथा प्रश्न, अपने आप से 3 सवाल पूछें। क्या आप इन सवालों में से किसी का भी जवाब हाँ में दे सकते हैं? क्या कोई ऐसा है जिस पर आप भरोसा रखते हैं कि वह आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना कर सकता है? प्रार्थना का समय निर्धारित करें। पांचवा प्रश्न, वचन के इस पद पर ध्यान दें, जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। मत्ती 7:12, जो कोई छुटकारा प्राप्त करने के लिए हमारे पास आता है उसे हम किन किन व्यवहारिक तरीकों से प्रेम, आदर और सम्मान दे सकते हैं? उन सब तरीकों की सूची बनाएं। छठवां प्रश्न, किस प्रकार से हमारी अधिकारपूर्ण आज्ञा परमेश्वर के द्वारा पूरे किए गए कार्य पर निर्भर करती है? सातवां प्रश्न, किस प्रकार से आप इस अध्याय को व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में और अपने प्रभाव के क्षेत्र में लागू करेंगे? प्रार्थना के साथ उन लोगों की सूची बनाएं जिन्हें आपको लगता है दुष्ट आत्माओं से छुटकारे की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा से मांगें कि वह आपके लिए छुटकारे की सेवकाई के द्वार खोले और जाकर उन लोगों से जिनके नाम उस सूची में हैं पूछें कि क्या वे प्रार्थना करवाना चाहते हैं या क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ।